ये भी कैवल्य भगवान का विषय है और ये पांच लब्धियां होना चाहिए। तो पांच लब्धियां आपको शुरू करना है, कब करना है? कभी कभी तो अपने को पता भी ना चले, जैसे शेर को दो मुनियों ने आकर उपदेश दिया और उपदेश के पश्चात बताया कि तुम दसवें भाव में तीर्थंकर बनोगे, उस शेर को पता भी नहीं चला कि कैसे परिणाम में इतनी निर्मलता आ गई। मांसाहार का भी उसने त्याग कर दिया, उस हिरण को जिसको मारा था उससे दूर हट गया वो, और फिर उसके पंजों में दांतों में खून लगा हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसे हाथ जोड़कर मुनियों की तरफ भक्ति भाव से देखता रहा, आंखों से आंसू बहाता रहा। आचार्य बलभद्र स्वामी ने लिखा है कि वो आंसू नहीं थे, वो मिथ्यात्व था। वो मिथ्यात्व पिघल कर आंखों से बाहर आ गया, तो आंखों से आंसू निकलते हुए दिख रहे थे, वास्तव में निकला क्या था? मिथ्यात्व। और उसके हृदय में सम्यक जागृत हो गया, सम्यक दृष्टि बन गया। तो ऐसा अवसर सभी के जीवन में आना चाहिए जिनके पास इतनी सामग्री है। कई बार काफी सामग्री तो होती है, जैसे पंचेंद्रीय है, सैनी है, जैन परिवार में जन्मा है, जिनवाणी का श्रवण कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है। और इस विषय में आचार्य ने यह भी उल्लेख किया है कि कई बार मुनि पद धारण करने के बाद भी मिथ्यात्व दूर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उस सब कुछ मिल गया लेकिन कुछ चीजें कम रह गई, करण लब्धि नहीं हो पाई, जैसे तो समय दर्शन नहीं होगा। प्रायोग की लब्धि तक अभव्य जीव भी चले जाते हैं, इतने निर्मल परिणाम हो जाते हैं उनके अभव्यों के भी, तो प्रायोग की लब्धि तक पहुंच गए, लेकिन करण लब्धि बहुत दुर्लभ है। तो इस तरह योग्य उपादान के योग से जैसे स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण निकल आता है, उसी प्रकार योग्य उपादान अपना हो जाए तो अपनी आत्मा भी सिद्ध परमात्मा बन सकती है। और सिद्ध परमात्मा बनने की पहली सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सोवाणम परम मुखस सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन को इस जीवन में चूकना मत, जहां तक बने इस पर्याय में सम्यक्त को चूकना मत, सम्यक्त से वंचित नहीं रहे। बार बार जिनवाणी का श्रवण करते करते कभी वो रस्सी का निशान पड़ जाता पत्थर पर, तो आपके हृदय पर जिनवाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बार बार चलने दो, स्वाध्याय चलने दो, अभ्यास चलते रहने दो, और बाकी क्रियाओं को छोड़ना नहीं। नहीं तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है स्वाध्याय चलने देते, बाकी पूजा और दान वगैरह सब चलो ठीक है उसको बाद में देख लेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो सब व्यर्थ है। नहीं, ऐसा मत सोचो, मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा से व्यर्थ है, लेकिन वो दान और पूजा से आपके जो शुभ भाव होंगे उससे भी आपको लाभ होगा। पूजा के जो शब्द है वो भी अपने आप में स्वाध्याय का काम कर सकते हैं। देखो प्रथम देव की पूजा पढ़ो, कितनी सारी बातें सीखने मिलती है, कितना ज्ञान प्राप्त होता है उसमें, अर्थ पर ध्यान दोगे तो बहुत ज्ञान मिलेगा। तो इस तरह ये बढ़ती है इसमें अपनी विशुद्धि, और इस क्रम से बढ़ते बढ़ते कभी भी सम्यक दर्शन हो सकता है। जैसे अभी परसों जो विषय निकला था आत्मा के बारे में, तो उसको सुनते सुनते किसी को हो जाए सम्यक दर्शन, अरे मेरा ये स्वरूप है, मैं तो पर्याय दृष्टि होने के कारण पज्जय मूढ़ा ही पर समय। प्रवचन सार के दूसरे अध्याय की प्रथम गाथा में आचार्य कुनकुन स्वामी लिखा है कि जो पर्याय को ही सब कुछ समझते हैं, जो उसी में मूढ़ है, मोहित है, वो पर समय मिथ्या दृष्टि है। लेकिन पर्याय से हट करके वही बात आती है, अध्यात्म दृष्टि से देखो तो दृश्य को ओझल करके अदृश्य को देखने की कला का नाम अध्यात्म है। दृश्य को ओझल करके, ओझल करने का मतलब अदृश्य करके, दृश्य को ओझल करके अदृश्य को देखने की कला अध्यात्म है। तो अपन जो कुछ दिख रहा है उसके अलावा और गहराई में जाकर के देखें कि ये शरीर एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ठोस है ये शरीर, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो इसके एक एक परमाणु में, परमाणु यानी विज्ञान में जिसको परमाणु कहते हैं, एक एक इसके अणु में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स वगैरह जितने सूक्ष्म कण हैं, उनके बीच में भी कितनी दूरियां हैं, बहुत दूरी है। जैसे आसमान में ताराओं के बीच कितनी दूरियां होती हैं, आप ऐसे दृष्टि डालोगे अमावस की रात में, और यहां अहमदाबाद में नहीं, किसी गांव में जाकर, क्योंकि अहमदाबाद में इतना प्रकाश है कि फिर आकाश के जो ज्योतिर्गण है वो स्पष्ट दिखते हैं और प्रदूषण भी हिसाब में। तो किसी ऐसे स्थान पर जाकर, अब तारंगा में जाकर के देखेंगे ऊपर, तो अमावस की रात में बहुत सारे तारागण दिखाई देते हैं, लेकिन सबके बीच में दूरियां हैं। उसी प्रकार अपने शरीर में भी जितने अणु परमाणु हैं उन सब में भी कुछ स्पेसेस हैं, दूरियां हैं, लेकिन फिर भी उनकी रचना ऐसी हुई है बंधन और संघात नाम कर्म से कि निश्चित्र दिखाई देते हैं, छिद्र नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी दूर दूर है। और अपनी आत्मा जो है वो क्या ऐसे परमाणुओं के समान अलग अलग बिखरी हुई है? आत्मा तो पूरी अखंड है, तनु मात्र उस शरीर के प्रमाण है, लेकिन शरीर में जैसे कानों में ये इतनी जगह पर हवा है, कान का एक आकार बना हुआ है और उसमें काफी ऐसा स्थान है जहां पर वायु 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 मात्र है, शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो नली जैसे है, कान की जो नली है वो अंदर तक के काफी स्थान तक बीच में हवा की जगह छोड़ करके चलती है। तो उन स्थानों में आत्मा के प्रदेश नहीं है, माने आत्मा में भी अपनी जो आत्मा शरीर के आकार में विस्तृत है उसमें भी इतनी पोल मिलेगी। वैसे नासिका है और भी शरीर के अंदर एक आंत, जो छोटी आंत रहती है उसमें जेजुनम नाम का एक हिस्सा रहता है, वो हिस्सा प्रायः खाली रहता है और अंदर स्वेलोड एयर भी रहती है, अपने शरीर में भोजन करते समय भी बहुत सारी वायु अंदर चली जाती है, फेफड़े के अंदर भी बहुत सारी वायु भरी रहती है। तो जिन स्थान पर वायु है, जिन स्थानों पर, वो वायु वाला स्थान जो है अपनी आत्मा के प्रदेशों से रिक्त है, अपने आत्मा के प्रदेश उन्हीं स्थानों पर है जहां पर शरीर के अवयव बिछे हुए हैं, विस्तृत है। लेकिन ऐसा उलझन, ऐसी उलझन है कि अपन ऐसे मिश्रित हो गए इसमें दूध पानी के समान एक में, कि इसका विचार करते करते भी एकदम मन थक सा जाता है कि अरे ये बहुत कठिन काम है। पर नहीं, पांच लब्धियों में जाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करके तत्वों का निर्णय आवश्यक है। तू चेतन अर देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि, अनादिकाल से मिले हुए शरीर और आत्मा, और जतन ते बिछुए, पुरुषार्थ से इनका वियोग होगा, ज्यो पै अरु पानी। जैसे दूध वाला पानी मिला दे दूध में तो उसको उबालते रहो दूध को, तो पानी उड़ जाता है कुछ समय के बाद, और फिर और ज्यादा उबालो तो अंत में खोवा भी बन जाता है, मिलावटी दूध का भी खोवा बन जाता है, खोवा इसको आप लोग मावा बोलते हैं ना, बन जाता है, उसमें से भी घी निकलता है। तो यतन से सब कुछ हो जाता है। इसी प्रकार अपन कितने भी कषायों में ग्रस्त हो, कितने भी आकुल व्याकुल, लेकिन पुरुषार्थ करते जाए तो फिर एक न एक दिन विशुद्धि में आकर वो सफलता प्राप्त करते हैं। और सम्यक प्राप्त करने के बाद भी बहुत बड़ा रास्ता है, बल्कि ये कहो कि सम्यक प्राप्त करने के बाद ही मतलब समझ लो सामने रास्ता आता है, मिथ्या तो जब तक है तब तक तो रास्ता भी नहीं है। सम्यक प्राप्त करने के बाद जो रास्ता, फिर उसको तो तय करते हैं, वो तो रुचि है कि जिस रुचि से वो आगे बढ़ता है। कोई भी कार्य तब सफल होता है जब रुचि भी हो और पुरुषार्थ, दोनों बातें आवश्यक। रुचि नहीं होगी तो पुरुषार्थ नहीं करेगा, और बिना रुचि का अगर पुरुषार्थ करता है तो फिर उस पुरुषार्थ में कमी रहेगी। तो रुचि और पुरुषार्थ, और अकेली रुचि और पुरुषार्थ ना करे ऐसा हो नहीं सकता। किसी को जलेबी प्रिय है तो फिर वो कभी ना कभी उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता ही है। तो रुचि और पुरुषार्थ सफलता के साधन है। तो इस तरह अभी जो चर्चा पहुंची अपनी यहां कि आत्मा क्या है, और ध्यान आत्मा का लगाना है अपने को। राग द्वेष में ध्यान लगाओगे तो संसार मिलेगा, और आत्मा का ध्यान करने से मोक्ष मिलता है। ध्यान लगाने की विधि बताई, रत्नत्रय धारण करो, मन को एकाग्र करो, इंद्रियों को वश में करो, और फिर ध्यान लगाओ आत्मा का। और फिर रत्नत्रय धारण करने के लिए क्या करना, आत्मवान बनने का क्या उपाय है, तो उसके लिए कहा सत्संगति। ज्ञानियों की संगति से ज्ञान मिलता है और अज्ञानियों की संगति से अज्ञान मिलता है। कषाय भाव अज्ञान है, समता भाव ज्ञान है। तो जैसी संगति में रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, उससे अपना मन प्रभावित हो जाता है, क्योंकि अनादि से वही संस्कार पड़ा है। ठंड के मौसम में खिड़की खोलेंगे तो शरीर कांपेगा, गर्मी के मौसम में खिड़की बंद करेंगे तो पसीना आएगा। तो ये शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है वातावरण का, और अपने मन पर भी प्रभाव पड़ जाता है। वास्तव में साधक तो वो है, साधना उसको कहते हैं, कि जो परिस्थिति बिगड़ने पर मनस्थिति को न बिगड़ने दे। परिस्थिति बिगड़ने पर मनस्थिति को न बिगड़ने देना ही साधना है। तो ध्यान की जो भूमिका बनाई थी, जिससे आत्मा का कल्याण होता है, उसमें इंद्रियों को वश में करना और मन को एकाग्र करना आवश्यक है, और साथ में रत्नत्रय होना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना रत्नत्रय को तो जीव का कल्याण होना नहीं। और रत्नत्रय में सबसे पहला क्या है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन एक प्रकार से आत्म कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है, पहली सीढ़ी, मंजिल नहीं। सम्यक दर्शन लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात समझने की है कि जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं अपन, तो सीढ़ियों में जो ऊपर वाली सीढ़ी होती है वो प्राप्तव्य होती है, और नीचे की जो रहती है वो त्याज्य हो जाती है, छोड़ने योग्य होती है। तो उस क्रम से अगर अपन चले तो फिर जो आगे की भूमिका है वो अपने लिए उपादेय है, और जो निचली है वो हे है, ये क्रम रहेगा। और अगर तत्व दृष्टि से देखें तो उपादेय क्या है? मोक्ष। फिर अपने को बीच की कोई सीढ़ी उपादेय है, क्योंकि सीढ़ी अपनी मंजिल नहीं है, सीढ़ी तो साधन है। तो साधन साध्य नहीं है, साध्य ही साध्य है। तो जिसके पास जो होता है उसके पास वही मिलता है। जहां कषाय होंगी वहां कषाय मिलेगी, जहां समता होगी वहां समता मिलेगी। देखो, राजा शिरणिक ने यशोधर मुनि के गले में सांप डाला। वैसे तो राजा शिरणिक उनको जान से ही मारने जा रहा था, लेकिन जब वो मारने जा रहा था, घोड़े पर सवार था, तो उस समय झाड़ियों में से एक सांप निकलकर सामने आ गया, तो घोड़ा घबरा गया, ऐसे पीछे हो गया। तब राजा ने सांप को मारा। सांप को मारने से क्या हुआ कि क्रोध थोड़ा कम हुआ। मुनि को मारने का जो क्रोध था उसमें परिवर्तन आया, और परिवर्तन आने के कारण क्या किया, उसने उस सांप को मुनि के गले में डाल दिया। मुनि को मारा नहीं, मुनि के गले में सांप डाल दिया। और 3 दिन बाद रानी से जाकर के बताया कि मुझे तुम्हारे गुरु मिले थे, मैंने उनका सत्कार किया है। तो रानी को आश्चर्य हुआ कि ये तो हमारे गुरु के विरोधी हैं, और फिर उन्होंने क्या सत्कार किया होगा। पूछा तो फिर बोले कि वो मिले थे मेरे को जंगल में, मैंने उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। रानी चेलना बेहोश जैसी हो गई इस बात को सुनकर, यानी अर्धमूर्छित जैसे हो गई। तब राजा को लगा कि इतनी जरा सी बात में ये इतनी पीड़ित हो गई। तो फिर राजा बोलते हैं कि इतनी सी बात को तुम इतना गंभीरता से सोच रहे हो, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सांप डाल दिया तो वो अभी वैसे के वैसे ही होंगे, खड़े होंगे, और फिर वो तो कब का उस सांप को अलग करके आहार पानी के लिए चढ़ा गया, क्योंकि जैन साधुओं को खूब माल मिलता है चौके में। तब फिर रानी बोलती है कि राजन, ये आपका भ्रम है, आपने जैन साधु को नहीं पहचाना, इसलिए आप जैन साधु को ऐसा समझते हैं, और यदि वो मेरे गुरु होंगे तो अभी भी वैसे ही खड़े होंगे। पर्वत विचलित हो सकता है, लेकिन साधु ऐसे उपसर्ग की घड़ी में आहार चर्या नहीं कर सकते। तो फिर राजा बोलता है कि अच्छा, अभी तक खड़े होंगे, 3 दिन हो गए, बोले अभी तक खड़े होंगे। रानी बोलती है, मेरे गुरु होंगे तो खड़े होंगे, चलो मैं जाकर देखना चाहता हूं, 3 दिन तक कोई खड़ा हो सकता है क्या? तो रानी सोचती है कि चलो अच्छा, ऐसी बहाने चलते हैं साथ। और रानी राजा के साथ जाती है वहां, तो वहां जाकर चांदनी रात थी, देखते हैं कि मुनिराज वैसे के वैसे ही खड़े हैं। और वो चांदनी में ये दिख रहा था कि उनके शरीर पर बहुत सारी चींटियां कीड़े चल रहे हैं, और उस मरे हुए सांप की दुर्गंध से वहां जीव जंतु आ गए थे, और फिर वो जीव महाराज श्री को भी काट रहे थे, और कुछ चींटियों ने तो महाराज श्री के गले के आसपास छिद्र कर दिए थे। क्या उन्होंने कैसा भयंकर उपसर्ग सहन किया, एक चींटी काटती है तो फिर सहन नहीं होता, घंटों तक बार बार हाथ वहां जाता है, बल्कि कई दिनों तक, तीन चार दिन तक के वहां पर तकलीफ रहती है, और उनको इतनी सारी चींटियों ने पूरा खा लिया एक प्रकार से, उनके शरीर का अंदर वाला भाग भी उन चींटियों ने खा लिया था, लेकिन फिर भी वो समता से विचलित नहीं हुए थे। और जब रानी चेलना ने उपसर्ग को दूर करके गुरु को नमस्कार किया, राजा ने भी नमस्कार किया, तब उन समता की मूर्ति उन साधु ने, यशोधर मुनिराज ने, वो जानते हैं कि श्रेणिक ने सांप मेरे गले में डाला और रानी ने उस सांप को हटाकर चींटियों को भी पृथक करके उपसर्ग का निवारण किया, तो उन्होंने दोनों हाथ उठा करके उभय और धर्म वृद्धि रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया कि राजा को रानी को दोनों को धर्म वृद्धि ऐसा मेरा आशीर्वाद, दोनों को आशीर्वाद दिया। तब राजा एकदम चौंक गया कि मैं सपना में देख रहा हूं, क्योंकि जिसने तीन दिन भूखा रखा हो उसको कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, उसको तो शाप दे सकता है। मैंने इनको तीन दिन भूखा रखा और साथ में इनके शरीर को असहनीय वेदना दी, ये क्या हो रहा है, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। फिर से आंख मल करके देखता है तो ऐसे हाथ था उनका, ऐसे नीचे कर रहे थे आशीर्वाद देने के बाद, और आवाज कानों में गूंज रही थी, उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों को मेरा आशीर्वाद है। तब राजा एकदम अचंभित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर इन्होंने सचमुच मुझे आशीर्वाद दिया है तो फिर ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तो देव पुरुष है, और इनको अगर कोई और कष्ट देता तो राजा होने के नाते मैं उसको मृत्यु दंड से कोई छोटा दंड नहीं दे सकता था, आज मैं ही राजा हूं, मैं ही अपराधी हूं, इसलिए मैंने जो इनको कष्ट दिया है उसका दंड अपनी ही तलवार से अपना मस्तक काट कर इनके चरणों में रख देना है। उसी समय मुनिराज बोलते हैं कि राजन मस्तक काटने का मत सोचो। तब राजा एकदम आश्चर्यचकित होकर रानी की तरफ देखता है कि इनको कैसे मालूम मैं ये सोच रहा हूं। तब रानी कहती है कि आप अभी भी नहीं पहचान रहे जैन साधु को, मस्तक काटने का जो आपने विचार किया उसकी बात तो आप छोड़ दो, आप पूर्व जन्मों में क्या थे वो भी पूछ लो, अब भी बता देंगे बोले। तब फिर राजा को आश्चर्य हुआ, फिर पूछा उसने पूर्व जन्म में क्या था, तब उन मुनिराज ने भवावली का वर्णन कर दिया, खदिरसार भील से लेकर फिर सुमित्र राजा की पर्याय सब का वर्णन कर दिया, और उस वर्णन को सुनकर के इसको ख्याल आ गया, और वहां बस वो देशना लब्धि हो गई, और बस उसकी श्रद्धा हो गई जैन साधु के प्रति। लेकिन फिर देखो संगति बदलने से फिर बुद्धि पलट जाती है, फिर संगति में गया श्रेणिक तो उसको उन लोगों ने बोला कि कहां से तुम उनके भक्त बन गए, बोले थोड़े से चमत्कार से प्रभावित होकर तुमने सच्चे धर्म को ही छोड़ दिया, बोले जैन साधु के भक्त बन गए तुम। अरे परीक्षा लेना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि एक चमत्कार देख लिया और फिर सिर झुका दिया, परीक्षा लेना चाहिए। तब फिर राजा श्रेणी ने परीक्षा ली साधुओं की, बहुत कठिन परीक्षा। रानी से बोला कि चलो आज अपन पड़गान करें, रानी को लगा कि सूरज कहां से उग गया, बोले आज पश्चिम से, पड़गान की इच्छा कैसे हो सकती है राजा को। फिर रानी ने अपने विवेक से समझ लिया कि किसी ने भड़काया है राजा को साधुओं के खिलाफ, बोले कि ठीक है चलो। रानी भी बहुत चतुर थी और सम्यक दृष्टि थी, तो जब पड़गान की बारी आई राजा ने सब परीक्षा का प्रबंध कर लिया था, और जहां आहार देने वाले थे जिस चौके में वहां भी उसने कुछ कारस्तानी कर डाली थी। और उसके बाद जब प्रगान का समय आया, वैसे अगर कथा चलती है तो बहुत लंबी चलती है, फिर प्रगान का जब समय आया तो समय का पता नहीं चलता, तब राजा रानी दोनों खड़े हो गए। फिर एक मुनि चले आ रहे थे मणिमाली नाम के, तो रानी ने प्रगान करते समय जो प्रगान की जो सामान्य विधि है, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि, चार शुद्धियां बोलते हैं। तो ऐसी जो विधि है उसमें रानी ने क्या जोड़ा, रानी लगे हे त्रिगुप्ति धारक मुनि अत्र अत्र नमोस्तु नमोस्तु, त्रिगुप्ति धारक बोला रानी ने। तो फिर वो मणिमाली जो मुनि थे वो आहारचर्या के लिए निकले थे, ऐसे उनने इशारा किया और आगे चले गए। फिर उनके बाद फिर एक दूसरे मुनि राजा है और उन्होंने भी त्रिगुप्ति वाली बात सुनकर के फिर ऐसे इशारा किया और चले गए। तीसरे मुनि आए, उनने भी ऐसे इशारा किया। फिर चौथे गुणसागर नाम के एक महामुनि आए, तो हे त्रिगुप्ति धारक मुनिराज नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ, वो आकर खड़े हो गए। फिर विधिवत प्रगान होता है और फिर चौके में ला करके जैसे ही निवेदन करते हैं कि हे मुनिराज आसन शुद्ध है, आसन पर विराजमान हुई है, तो मुनिराज एक क्षण के लिए वहां पर आसन की तरफ देखते हैं और उसके बाद ऐसे आहार का संकल्प त्याग कर उस दिन उपवास धारण करके अंतराय करके वापस चले जाते हैं। उनका आहार नहीं होता उसमें। राजा बोलते हैं कि चार चार साधु अपने यहां आए लेकिन और एक साधु तो अंदर भी आ गए, पर आज आहार दान का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्या कारण है? रानी बोलती है कि आप ही जानो क्या कारण है, क्या फिर चलो महाराज से पूछे अपन। तो फिर उन तीन महाराजों से जब पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आए, तो फिर मणिमाली मुनि बोलते हैं कि एक बार मैं श्मशान में ध्यान कर रहा था, और ध्यान ऐसे पद्मासन में बैठ करके नहीं शवासन में, तो किसी तांत्रिक ने मुझे मुर्दा समझकर अपनी तंत्र विधि की, मेरा सिर जल गया बोले उसमें। तो जब सिर जल गया तो मेरा शरीर कांपने लगा, तो मेरी काय गुप्ति दूषित हो गई, इसलिए मैं अपने आप को तीन गुप्ति का धारक नहीं गिनता। फिर वचन गुप्ति वाले दूसरे जो मुनि थे उनने बोला कि मेरे पास मनोगुप्ति और काय गुप्ति तो है, लेकिन वचन गुप्ति में मेरा दोष समझता हूं मैं, क्योंकि एक बार मैं कायोत्सर्ग में वृक्ष के नीचे खड़ा था और किसी ने आकर के कोई प्रश्न पूछा, वन देवता ने उसका जवाब दे दिया, उसकी समझ में यह आया कि मुनि ने जवाब दिया है, तो मेरे निमित्त से उसके मन में यह विकार आया है कि मुनि ने जवाब दिया है, तो मैं अपनी वचन गुप्ति को दूषित मानता हूं। फिर मनोगुप्ति वाले मुनि से पूछते हैं कि आपकी मनोगुप्ति कैसे दूषित है, तो बोले एक बार मैं जब आहारचर्या के लिए गया तो चौके में एक माता को देखकर, जब उनके चरण मैंने देखे तो उनके चरण को देखकर मुझे अपने रिश्तेदारों की स्मृति आई कि मेरे घर में भी किसी के चरण इन्हीं के समान थे, तो ये जो स्मृति आई उस स्मृति से मुझे अपना पूर्व माने दीक्षा के पहले का याद आ गया, तो इसलिए मेरा मन मैं मनोगुप्ति से संपन्न नहीं समझता। राजा श्रेणी बहुत प्रभावित हुए कि ये जैन साधु कितने सहज रूप से अपनी गलतियां बता देते हैं, लोग तो अपनी अपने दोषों को छिपा कर रखते हैं, लेकिन ये तो एकदम सहज रूप से बता रहे हैं कि हमसे ये हमारे में ये कमी है। फिर आखिरी जो मुनि थे उनके पास गए तो उन मुनिराज ने बोला कि तुम्हारा चौका शुद्ध नहीं था, जब तुमने मुझे आसन पर बैठने के लिए कहा तो वहां पर नीचे अशुद्ध पदार्थ थे, जमीन के नीचे हड्डियां थी। राजा श्रेणी एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात पकड़ ली इन्होंने, जो रानी को भी नहीं मालूम थी वो बात इनको मालूम हो गई। इन्होंने बोला कि आपको कैसे मालूम, तब फिर मुनिराज बोलते हैं कि राजन त्रिगुप्ति गुप्ता नाम अवधि ज्ञान उत्तम नान्यथा जायते भूप तृतीय आदि कभी देना कि हे राजन हे श्रेणी राजा, जिसके पास तीन गुप्तियां होती हैं उसके पास कोई रिद्धि भी होती है, और मेरे पास तीन गुप्ति होने के कारण मुझे अवधि ज्ञान, और अवधि ज्ञान से मुझे मालूम पड़ गया कि वहां अंदर हड्डियां पड़ी हुई। तब राजा को समझ में आया कि रानी ने इसीलिए तीन गुप्ती वाले मुनि को बुलाया था, और जो तीन गुप्ती वाले नहीं थे वो आए नहीं। वास्तव में जैन साधु की महिमा अद्भुत है। भगवान आ गया राजा के हृदय में, और उसके बाद फिर जो संगति मिली है, जब समाचार आते हैं कि विपलाचल पर्वत पर, वैभार पर्वत पर, सबसे पहले महावीर स्वामी का जो प्रथम बार समवसरण लगा था वो वैभार पर्वत पर लगा था, फिर बाद में विपलाचल पर्वत पर आ चुके हैं, पांच पहाड़ियों पर पांच बार आए महाराज भगवान महावीर स्वामी, पांच पांच बार नहीं, मतलब पांच पहाड़ियों, राजगृह की जो पांच पहाड़ियां उनमें एक एक बार आया, कुल पांच बार आया राजगृह। जैसे गिरनार में नेमिनार भगवान आए पांच बार, वैसे राजगृह में महावीर स्वामी पांच बार आए, और उसके बाद फिर राजा का जीवन ही पलट गया। कहां से बदलाव आया? ज्ञानी की संगति से। देखो, संगति पहली बार जब मिली तो क्या किया उसने? उपसर्ग किया। लेकिन उपसर्ग करने पर भी वो संगति उसके लिए आगे चलकर हित का कारण बनी, क्योंकि जब रानी के साथ वहां पहुंचा तो गुरु ने उपसर्गकर्ता को भी आशीर्वाद दिया। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि कभी कोई ऐसा हो सकता है, मनुष्य कोई साधु भी ऐसा हो सकता है जो आशीर्वाद दे अपना बुरा करने वाले को। तब राजा को लगा कि भला करने वाले को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, बुरा करने वाले को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा इंसान धरती पर नहीं हो सकता, ये कोई असाधारण साधु है। ये उसको पहली बार उस समय महसूस हुआ, और फिर उसकी श्रद्धा पलटी। यानी यशोधर मुनि की समता ने नरकगामी श्रेणी के मन को भी बदल दिया। इतनी महान क्षमता होती है साधु के अंदर। साधु के वात्सल्य से हत्यारा भी साधु बन जाता है, इतना महान प्रभाव होता है उनके अंदर। और इसका उदाहरण राजा पद्मरथ का है। आपकी स्मृति में हो कि जब दीप्त वृद्धि के धारक उन मुनिराज के पास घोड़ा लेकर के आता है, क्या कर रहे हो बैठे बैठे यहां पर जंगल में? तब मुनिराज बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? बोले, घोड़े पर बैठे बैठे यहां शिकार करके कहां नरक जाने की तैयारी कर रहे हो? तुम किस अभिमान से मुझे प्रश्न पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं? तुम खुद तो देख लो कि मैं क्या कर रहा हूं। तब राजा घोड़े से उतरता है तो देखता है कि बहुत तेज है मुनि के अंदर। दीप्त वृद्धि के धारी जो मुनि होते हैं कभी आहार नहीं लेते, और उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता। फिर उसको देख करके राजा को लगता है कि ये तो कोई असाधारण व्यक्तित्व है, इनके तेज को मैं मतलब निगाह नहीं मिला पा रहा हूं इनसे। तो फिर घुटने टिक जाते हैं उसके, और बोले, कुछ बताओ महाराज, कुछ मेरी भलाई की बात बताओ। तो फिर उसको उपदेश देते हैं, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। देखो, एक हत्यारा, देखो कहां से कहां कब लब्धि हो जाए कोई ठिकाना है, कब योग्य उपादान कब जागृत हो जाए कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो उस हत्यारे राजा ने जो सैकड़ों जानवरों को मारता रहता था, सैकड़ों क्या हजारों लाखों, वो शिकार करने वाला व्यसनी राजा गुरु के उपदेश से अंतर मुहूर्त में मिथ्यात्व से मुक्त हो जाता है। और फिर वो संकल्प करता है कि मैं वासुपूज्य भगवान के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। और ये घटना सुनाई थी पहले, तो वासुपूज्य भगवान के पास जाता है, और बीच में इतनी परीक्षा लेते हैं देव लोग कि उस परीक्षा में अच्छे खासे लोग नापास हो जाए, लेकिन वो उस परीक्षा में भी सफल होता है। और समवसरण में जब पहुंचता है तो वहां पर जाकर के जो कुछ होता है, इतना परिवर्तन आ जाता है कि वो राजा जो अंतर मुहूर्त पहले प्राणियों का हत्यारा था, तीव्र मिथ्यात्व से ग्रस्त था, और साधु को भी घोड़े पर बैठकर पूछने वाला था कि क्या कर रहा है बैठे बैठे यहां पर, वो वहां जाकर गणधर पद को प्राप्त हो जाता है। वासुपूज्य भगवान का गणधर बन जाता है। मरण खंडिका में बड़ी सुंदर कथा आती है, कभी आपका सौभाग्य जागृत हो तो मरण खंडिका ग्रंथ का स्वाध्याय करना, बहुत सुंदर ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ, मोटा ग्रंथ, आचार्य अमित गति द्वारा रचित मरण खंडिका। तो जब तपस्या को व्यक्ति अंगीकार कर लेता है, जैसे व्यसनी से साधु बन गया, साधु बनने के बाद फिर तपश्चरण का क्रम प्रारंभ होता है, 22 परीक्षण, तो उनको जीत कर कर्मों की निर्जरा करते हैं, उसकी व्याख्या अभी फिर करेंगे। आज धर्म ध्यान की अपन ने बातें की हैं, लेकिन श्लोक अपने उतने ही रहे, उसके आगे का अपन आगे देखेंगे।